लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। कुटिल का मार्ग कांटों और फंदों से भरा है। जो व्यक्ति अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता वह उससे दूर रहता है। युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की विस्तृत व्याख्या की थी। कांटे और फंदे प्रतीकात्मक रूप से विकृत व्यक्ति के कठिन मार्ग का विवरण प्रदान करते हैं। यह रूपक काम वासना और आसान पैसा जैसे प्रलोभनों को संदर्भित करता है जो युवाओं को लुभाते हैं। नैतिक रूप से पतित लोग खतरनाक रास्ते पर चलते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति अपना जीवन बदलना चाहते हैं, यदि वे प्रलोभनों से दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने उन रास्तों को बदलना होगा जिन पर वे चल रहे हैं। लेखक कहता है कि बुद्धिमान पुरुष या स्त्री अपने जीवन की निगरानी करते हुए, एक प्रकार से अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए, विकृत मार्ग और उस मार्ग से जुड़े कांटों और फंदों तथा जालों से दूर रह सकते हैं। अभिप्राय यही कि जीवन में संयम और अनुशासन जरूरी है, और जिनके पास अनुशासन का विवेक है वे जीवन के खतरों से बच जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों को और युवकों को बाल्यकाल से ही सन्मार्ग की शिक्षा दी जाए ताकि वृद्धावस्था में भी वे उस मार्ग से भटके नहीं। श्रोताओं, बच्चों को प्रशिक्षण की जरूरत होती है और माता पिता का काम केवल बच्चों को किसी विशेष तरीके से बड़ा होने देना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित करना है कि किस तरह वे जीवन में आगे बढ़ें। बच्चे की ताकत और कमजोरियों को समझना और उन्हें ध्यान में रखते हुए उनका पालन पोषण करना ही माता पिता का दायित्व होता है, ताकि बच्चा आगे बढ़कर अच्छा व्यक्ति और अच्छा नागरिक बन सके। फिर पद संख्या 7, 8 और 9 में लेखक कहता है, धनी दरिद्रों पर शासन करता और ऋणदाता ऋणी को अपना दास बना लेता है। जो अन्याय बोता वह विपत्ति लुनेगा, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। जिसके चेहरे पर सहानुभूति झलकती है उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि वह दरिद्रों को अपनी रोटी बांटता है। श्रोताओं, जिनके पास थोड़ा है वे उन लोगों के अधीन रहेंगे जिनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि वे उन पर निर्भर रहते हैं। अमीर गरीबों पर शासन करते हैं और अक्सर घमंड और कठोरता के साथ ऐसा करते हैं, जबकि ईश्वर किसी का तिरस्कार नहीं करते। इसलिए यदि अमीर अपने निर्धन भाई को कुचलता है, उसके विरुद्ध अन्याय करता है, तो वह विपत्ति लुनेगा, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो अधर्म का बीज बोता और फल पाने की आशा से अन्याय करता है, उसे कभी कोई लाभ नहीं होगा और न ही संतुष्टि मिलेगी। उसे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए मुसीबतें पैदा करते हैं, वे अपने लिए मुसीबतों को खड़ा कर लेते हैं। अन्याय के विपरीत सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो दरिद्रों में अपनी रोटी को बांटते, यानी जो कुछ उनके पास है उसमें से जरूरतमंद को भी दे देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर के कृपा पात्र बनेंगे, उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। आगे सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के 10वें और 11वें पदों में लेखक कहता है, उपहासक को भगा दो और झगड़ा मिट जाएगा, वाद विवाद और अपमान का अंत हो जाएगा। जिसे हृदय की पवित्रता प्रिय है और जिसकी बातों में मधुरता है, उसे राजा अपना मित्र बनाता है। श्रोताओ, उपहास करने वाला, ठट्टा करने वाला मन मुटाव फैलाता है, वह झगड़े का कारण बनता है। जब वह निकाल दिया जाता है तब विवाद भी समाप्त हो जाता है, कलह और तिरस्कार बंद हो जाता है। विभाजनकारी उपहास करने वाले के चले जाने पर कलह और शर्मनाक अपमान एवं निंदा का माहौल बंद हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि विवाद, कलह और तिरस्कार के माहौल का कारण होते हैं लोग। वह जो हृदय की पवित्रता को पसंद करता है और जिसकी बातों में मधुरता है, उसके होठों पर कृपा है। आंतरिक पवित्रता प्रायः कृपापूर्ण शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। होठों पर कृपा धर्म परायण व्यक्तियों, बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं का प्रतीक है। लेखक कहता है कि राजा भी उसका मित्र होगा। श्रोताओ, सच्ची भक्ति और बुद्धिमता व्यक्ति के अंतर में से आती है और मौखिक शब्दों में प्रकट होती है। इसलिए राजा और प्रशासक सभी सच्ची भक्ति और विवेक से परिपूर्ण व्यक्तियों की संगति पसंद करते हैं, उन्हें उच्च स्थानों पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें अपने मित्र बना लेते हैं। आप किसी से भी बात करें, जो कुछ भी बोलें, आपके शब्दों में मिठास होनी चाहिए। आप सदैव मधुरता का प्रयास करें और आपकी मीठी बोली आपको सफलता की चोटी तक ले जाएगी। इसीलिए लेखक कहता है कि मनुष्य के मुख से निकले मीठे बोल उसके आचरण को भी शुद्ध कर देते हैं। मनुष्य का ऐसा आचरण उसे निश्चित रूप से ईश्वर के साथ निरंतर संगति में योगदान देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रकाश में चलता है, जैसा कि संत योहन अपने पहले पत्र के पहले अध्याय के 7वें पद में कहते हैं। यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आगे 22वें अध्याय के 12वें पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, प्रभु की आंखें ज्ञान की रक्षा करती हैं, वह दुष्ट की बातों को व्यर्थ कर देता है। श्रोताओ, यहाँ इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि प्रभु ईश्वर ज्ञान को संरक्षित करने के लिए विशेष देखभाल करते हैं, अर्थात मानव जाति के भ्रष्टाचार और मनुष्यों के दिमागों को अंधा करने की शैतान की सारी चालाकियों के बावजूद मनुष्यों के बीच स्वयं का और अच्छे और बुरे का ज्ञान बनाए रखते हुए दुनिया में प्रभु ईश्वर भलाई को, धर्म को बनाए रखते हैं। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि प्रभु की आंखें ज्ञान की रक्षा करती हैं, उन्हें अज्ञानता पसंद नहीं। वे प्रज्ञा के, बुद्धिमता के और विवेक के ईश्वर हैं और जो ईश भक्ति में लगते और ईश नियमों का पालन कर अपना जीवन यापन करते हैं, ईश्वर उन्हें प्रज्ञा, बुद्धिमता और विवेक का वरदान देते हैं। ईश्वर की आंखों की शक्ति और अच्छाई उनकी सतर्क कृपा का एक अद्भुत उदाहरण है। ईश्वर ज्ञानियों, बुद्धिमानों, भले लोगों और विशेष रूप से वफादार गवाहों को संरक्षित रखते हैं, जैसा कि प्राचीन व्यवस्थान के दूसरे इतिहास ग्रंथ के 16वें अध्याय के 9वें पद में हम पढ़ते हैं। प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाते हैं, जिससे वे उन लोगों की सहायता करें जो सारे हृदय से उन पर भरोसा रखते हैं। इसके विपरीत जो लोग दुष्ट होते हैं, दुष्टता के मार्ग पर चलकर लोगों को उत्पीड़ित करते हैं, प्रभु ईश्वर उनके सभी कामों को असफल कर देते, उनकी सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। अस्तु श्रोताओं, हम ये स्मरण रखें कि ईश्वर ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं और उनकी युक्तियों को सफल करते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। ईश्वर अपनी कृपा से उनमें ज्ञान को सुरक्षित रखते, उनमें और उनके द्वारा भले कामों को और भलाई को अंजाम देते। कोई भी आपत्ति आए, प्रभु ईश्वर भलाई पर चलने वालों की प्रार्थना सुनते तथा उन्हें सुख शांति का वरदान देते हैं। आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने जानकारी दी है कि पोप फ्रांसिस पुण्य बृहस्पतिवार की दमविधि रोम स्थित रेबिपिया महिला जेल में संपन्न करेंगे। बुधवार को वैटिकन ने घोषित किया कि पोप फ्रांसिस 28 मार्च को शाम 4 बजे पुण्य बृहस्पतिवार के अवसर पर प्रभु भोज की धम्मविधि रोम स्थित महिला जेल में संपन्न करेंगे। अपने इस कार्यक्रम के दौरान पोप महिला कैदियों और वहां के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। पुण्य बृहस्पतिवार को प्रभु भोज की धम्मविधि के साथ पास्का त्रितियम शुरू होता है, जिसमें ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की यादगारी मनाई जाती है और इसके अंत में पास्का महापर्व मनाया जाता है। प्रभु भोज की धम्मविधि के दौरान पौत्र मिस्सा में यीशु का अनुसरण करते हुए मुख्य अनुष्ठाता कुछ लोगों के पैर धोते हैं, जिन्होंने अपने मृत्यु की पूर्व संध्या अपने शिष्यों के पैर धोते हुए उन्हें सेवा करने की शिक्षा दी थी। संत पापा फ्रांसिस ने इससे पहले 2015 में भी रोम के रेबिपिया जेल में पौत्र मिस्सा संपन्न किया था। इस साल के इस कार्यक्रम में फर्क यही होगा कि यह धम्मविधि निजी स्तर पर संपन्न की जाएगी और यह आम जनता के लिए खुली नहीं होगी। पोप फ्रांसिस की इराक की पेरितिक यात्रा के 3 साल बाद मोसुल और आगरा के खलदेई महाधर्माध्यक्ष माइकल नजीब ने वैटिकन न्यूज से कहा कि ख्रिस्तों के लिए जारी कठिनाइयों के बावजूद उस ऐतिहासिक यात्रा का फल धीरे धीरे मुस्लिम बहुल राष्ट्र में दिखना शुरू हो गया है। 5 मार्च 2021 को संत पापा फ्रांसिस ने इराक की प्रेरितिक यात्रा शुरू की थी, जो मध्य पूर्वी राष्ट्र में किसी पोप की पहली यात्रा थी। अपनी 4 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा में पोप फ्रांसिस ने बागदाद के साथ साथ ऊर के मैदान, अब्राहम के जन्म स्थान और नजाफ, नसीरिया, इरबिल, मोसुल और काराकोश शहरों का दौरा किया था। वहां उन्होंने ख्रिस्ती समुदाय तथा राजनीतिक और धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात की थी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य इराक में घटते ईसाई समुदायों के लिए अपनी निकटता और आध्यात्मिक समर्थन प्रदान करना था, जो अभी भी तथाकथित इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा 4 साल के उत्पीड़न से जूझ रहा है। और साथ ही वे अंतर्धार्मिक संवाद एवं समझ को प्रोत्साहित करना चाहते थे। लगभग 40 मिलियन लोगों के देश में ख्रिस्ती लोगों की आबादी दशकों से लगातार घट रही है। महाधर्माध्यक्ष नजीब ने बतलाया कि हालांकि पोप फ्रांसिस ने उन्हें सांत्वना दी और 2017 में आईएसआईएस की सैन्य हार के बाद प्रवासी इराकी ईसाइयों को पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है,
परंतु कई लोग अभी भी झिझक रहे हैं और कई परिवार चल रही असुरक्षा के कारण नीनवे मैदान और इराकी कुर्दिस्तान से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि क्षेत्र में ख्रिस्तों को एक दूसरे से लड़ने वाले स्थानीय मिलिशिया सेना से धमकी और संभावित हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और उनके अधिकांश घर जो आईएसआईएस के कब्जे के दौरान नष्ट हो गए थे अभी भी मलबे में हैं। ख्रिस्त ऐसे स्थानों पर अपना जीवन फिर से शुरू नहीं करना चाहते जो अभी भी उनके लिए असुरक्षित है और जिन्हें सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती है। पोप फ्रांसिस की यात्रा का एक मुख्य आकर्षण इराक के शीर्ष शिया मौलवी ग्रैंड आयतुल्ला अली अल सिस्तानी के साथ उनकी मुलाकात और भाईचारा पर बयान था जो अबू धाबी दस्तावेज का पूरक है, जिस पर पोप फ्रांसिस ने फरवरी 2019 में अल अजहर के सुनी ग्रैंड इमाम शेख अहमद अल तायब के साथ हस्ताक्षर किए थे। महादमदश नजीब के अनुसार यह आयोजन पोप फ्रांसिस की इराक यात्रा के सबसे सकारात्मक परिणामों में से एक है और ख्रिस्तों एवं मुसलमानों के बीच आपसी समझ की दिशा में एक और कदम है। इस तथ्य के आलोक में कि देश में शिया 60-65% मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा, यह एक खूबसूरत मुलाकात थी जिसने कई गलतफहमियों को दूर किया। अब हम शत्रु के रूप में नहीं बल्कि मानवता में भाइयों के समान देखे जाते हैं। पोप फ्रांसिस ने 7 मार्च को मोंटेनेग्रो के राष्ट्रपति जाकोब मिलातोविक से वैटिकन के प्रेरितिक प्रसाद में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन और वैटिकन विदेश सचिव महादमदश पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकातें की। जीनो चेकेतिन ने जब अपनी 22 वर्षीय बेटी को समर्पित एक पुस्तक प्रस्तुत की जिसकी हत्या नवम्बर 2023 में हुई थी, उन्होंने खुलासा किया कि पोप ने उन्हें फोन किया था। वेनेतो की छात्रा जूलिया जिसकी हत्या 11 नवंबर 2023 को हुई थी और जिसने पूरी इटली को हैरान कर दिया था, उसके पिता जेनो ने टेलीफोन पर संत पापा फ्रांसिस से बात की। जीनो ने 5 मार्च को अपनी बेटी जूलिया को समर्पित पुस्तक डियर जूलिया को पादवा के थियात्रो वेर्दी में प्रस्तुत किया। यह खबर जिसकी पुष्टि वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने की है, स्थानीय समाचार आउटलेट्स द्वारा रिपोर्ट की गई थी। जीनो बतलाते हैं कि फोन कॉल इटली के कातिधर्मदक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष और बोलोनिया के महाधर्मदक्ष कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी के माध्यम से आया था। उन्होंने कहा, वे ही हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था, यह कहते हुए मैं आपको संत पापा से बात कराता हूँ। शोक संतप्त पिताजी ने बतलाते हुए कहा, मेरा उच्च अधिकारियों के साथ कुछ हद तक अस्पष्ट संबंध है, लेकिन अगर कोई विश्वास नहीं भी करता है तो भी वे 2 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब आप उनके शब्दों को सुनते हैं तो आपको लगता है कि 2 अरब लोग आपकी पीठ थपथपा रहे हैं और आपका समर्थन कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रही महिला प्रतिभागियों को संबोधित अपने संदेश में कहा कि हिंसा, युद्ध और मानव हृदय की श्रेष्ठ भावनाओं को दबाने वाली विचारधाराओं से भयभीत समय में महिलाओं का योगदान पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। सम्मेलन की विषय वस्तु है कलीसिया में महिलाएं मानवता के निर्माता। संत पापा ने अपने संबोधन की शुरुआत उन महिलाओं का नाम लेते हुए किया जिन्होंने पौत्रता का साक्ष्य दिया है। उन 10 महिलाओं में संत जोस्मिन बकीता और संत मदर तेरेसा भी शामिल हैं। संत पापा ने कहा, इन महिलाओं ने परोपकार, शिक्षा और प्रार्थना के माध्यम से दुनिया को दिखलाया कि प्रभावशाली महिलाएं किस तरह ईश्वर की पौत्रता को खास रूप में प्रतिबिंबित कर सकती हैं। उन्होंने गौर किया कि कलीसिया के इतिहास में कई महिलाएं रही हैं जिनके आकर्षण ने कलीसिया में नई आध्यात्मिक शक्ति और महत्वपूर्ण सुधार पैदा की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।